लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। अधोलोक और महागर्त की तरह मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती। घरिया द्वारा चांदी और भट्टी द्वारा सोने की और दूसरों की प्रशंसा द्वारा मनुष्य की परख होती है। तुम मूर्ख को ओखली में रखकर अनाज की तरह कूट सकते हो, किंतु उसकी मूर्खता उससे अलग नहीं कर सकते। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 27वें अध्याय के 20 से लेकर 22 तक के पदों में निहित शब्द। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के विगत प्रसारण में हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। इन पदों में भी सूक्ति ग्रंथ का लेखक जीवन उपयोगी परामर्शों का सिलसिला जारी रखता है। अधोलोक और महागर्त शब्दों का प्रयोग वह कभी तृप्त न होने वाली अर्थात मृत्यु और पाप के लिए करता है। मृत्युलोक कभी तृप्त नहीं होता, वह शापित आत्माओं का रास्ता देखता है। इसी प्रकार पाप कभी तृप्त न होने वाला होता है। पाप लालच, लोभ या वासना के प्रति मन की भूख और हवस का पर्याय है, जो कभी तृप्त नहीं होती। मनुष्य के बारे में लेखक का कहना है कि उसकी आंखें कभी तृप्त नहीं होती, क्योंकि वह कभी संतुष्ट ही नहीं होता। कुछ न कुछ की कामना उसके मन में बनी रहती है। अस्तु लेखक कहता है कि जिस प्रकार चांदी घरिया में और सोना भट्टी में परखा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को उसके आचरण द्वारा परखा जाएगा। यदि प्रभु पर उसकी श्रद्धा रही और उसकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहीं, तो अवश्य ही वह सुख शांति का हकदार होगा। श्रोताओं, 27वें अध्याय का 20वां पद एक कसौटी के सदृश है, जिसके द्वारा हम स्वयं को परख सकते हैं। चांदी और सोने को भट्टी और परखने के बर्तन में डालकर परखा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भी परख होती है। उसके प्रशंसनीय कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा होती है और उसके दुष्कर्मों के लिए उसकी निंदा। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा द्वारा ईश्वर के प्रति अधिक कृतज्ञ बनता है, अपने मित्रों के प्रति अधिक आदरशील बनता है, अपनी प्रतिष्ठा पर दाग न लगाने वाली हर बात के प्रति सतर्क रहता है, अपने आप को सुधारने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील रहता है तथा दूसरों की भलाई का प्रयास किया करता है, ताकि अपने मित्रों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके, तो इससे यह प्रतीत होगा कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह एक भला इंसान है। कुरिन्थियों को प्रेषित दूसरे पत्र के 6वें अध्याय के 8वें पद में संत पॉल लिखते हैं, सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। फिर 22वें पद में लेखक कहता है, तुम मूर्ख को ओखली में रखकर अनाज की तरह कूट सकते हो, किंतु उसकी मूर्खता उससे अलग नहीं कर सकते। श्रोताओं, मूर्ख व्यक्ति वे होते हैं जो किसी की सलाह सुनने को तैयार नहीं होते। वे मनमानी करने से नहीं चूकते, चाहे उन्हें कितनी ही बार गलत करने से रोका जाए। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि भले ही आप मूर्ख के साथ कैसा भी व्यवहार कर लें, वह अपनी आदत नहीं छोड़ता। इसलिए मूर्खों से अलग रहा जाए, मूर्खों की संगति कभी न की जाए, क्योंकि वह अपनी मूर्खता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। श्रोताओं, मूर्खों को उनके कर्मों के लिए खुद ब खुद सजा मिल जाती है। इस धरती पर न्यायाधीश कानून की कठोरता से उन्हें सीधे मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं, किंतु ईश्वर अपने निर्णयों द्वारा उन्हें सीधे मार्ग पर ले जाते हैं। मनुष्य बल प्रयोग द्वारा और तर्कणा द्वारा मूर्ख को सीधे रास्ते पर लाता है, किंतु ईश्वर दया और प्रेम द्वारा मनुष्य को सही मार्ग पर लाते हैं। हम ईश्वर की ही सुध लें, उन्हीं की शरण जाएं, उन्हीं में अपना विश्वास प्रकट करें।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 27वें अध्याय के अंतिम चार पदों में, यानी कि 23 से लेकर 27 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। लेखक कहता है, अपने पशुओं की दशा का ध्यान रखो, अपने झुंड की देखभाल करो, क्योंकि धन सदा के लिए बना नहीं रहता और मुकुट पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं टिकता। जब घास कट गई और नई घास उगती है, जब पहाड़ों पर की वनस्पति बखार में एकत्र की गई है, तो तुम्हें अपने भेड़ों से कपड़े और अपने बकरों से खेत खरीदने का दाम मिलेगा। तुम्हारे पास बकरियों का पर्याप्त दूध होगा, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की तृप्ति और तुम्हारी दासियों का भरण पोषण हो सकेगा। श्रोताओं, इन पदों में हमें अपने कामों में मेहनत का आदेश दिया गया है। यह आदेश किसानों, चरवाहों और मवेशियों का व्यापार करने वालों के लिए है। हालांकि इसे अन्य सभी वैध व्यवसायों पर भी लागू किया जा सकता है। चाहे हमारा काम घर के अंदर हो या घर के बाहर, हमारा ध्यान अपने काम पर लगा होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें उसे निष्ठापूर्वक करें, यही लेखक का परामर्श है। इसका अर्थ यह है कि हमें इस संसार में कुछ न कुछ काम अवश्य करना चाहिए और आलस्य में जीवन यापन नहीं करना चाहिए। द्वितीय, हमें अपने कामों को उचित रीति से और पूरी तरह सोच समझकर करना चाहिए। तृतीय, अपने कामों की देखभाल हमें खुद करनी चाहिए, इसे अन्यों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा तथ्य यह कि अपने काम के प्रबंधन में हम विवेकशील और विचारशील रहें, चीजों की स्थिति को जानें और उन पर अच्छी तरह से ध्यान दें, ताकि कुछ भी न खोएं, कोई भी अवसर हाथ से न निकलने दें, अपितु हर काम उचित समय से और उचित ढंग से करें और इस तरह से करें कि उसका सर्वोत्तम लाभ मिल सके। अंतिम और अहम बात यह है कि हमें मेहनती होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। हम हाथ पर हाथ धरे केवल योजनाएं न बनाएं, बल्कि उठें और काम करें, अपने झुंडों की देखभाल करने वाली की तरह अपने काम में अपना दिल लगाएं। 24वें पद में लेखक सांसारिक धन की अनिश्चितता को रेखांकित करता है, क्योंकि धन हमेशा के लिए नहीं होता। वही टिकाऊ होता है जो हमारे पास है, यानी कि हमारे झुंड, हमारे गाय बैल, जिनसे हमारी जीविका चलती है। यही अहम है, प्रमुख यही है, जो एक क्रम में हमेशा के लिए रहेंगी। जबकि व्यापार और माल में धन ऐसा नहीं होगा। शायद राजघराना आपके परिवार के लिए उतना पक्का न हो जितना कि आपके भेड़ बकरियां और गाय बैल। तथापि चेतावनी भी देता है कि यह धन भी खत्म हो जाएगा यदि इनकी आपने अच्छे से देखभाल न की हो। श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ के 27वें अध्याय के अंतिम पदों में लेखक ने यही कहना चाहा है कि परिवारों के स्वामियों को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारों के लिए भी प्रबंध करना चाहिए। तथा यह भी देखना चाहिए कि उनके सेवकों को उचित भरण पोषण मिले। हमारा लक्ष्य होना चाहिए सादा भोजन और सादा वस्त्र। लेखक कहता है कि यदि तुम अपने मेमनों के ऊन से बने घर के बुने हुए कपड़े पहनते हो तथा बकरियों के दूध से तृप्त होते हो तो अपने आप को धन्य समझो। जो तुम्हारे घराने के भोजन और तुम्हारी दासियों के भरण पोषण के लिए काम आता है वही तुम्हारा भोजन हो। दूर की कौड़ी और महंगी खरीदी हुई स्वादिष्ट चीजों की लालसा मत करो। तात्पर्य यही कि व्यक्ति अपने काम धंधों के प्रति सचेत रहे, सावधान रहे और अपने सामर्थ्य के अनुकूल मेहनत करे ताकि उसका, उसके परिवार का और उसके लिए काम करने वालों का भरण पोषण उचित रीति से हो सके।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां ये जमीन ये जीवन भी तेरी कृपा है तेरी दया से धरती थमी
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पूर्वी कलीसियाओं के लिए गठित परिषद के प्रीफेक्ट कार्डिनल क्लाउडियो गुचेरेत्ती इस सप्ताह सीरिया की 4 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा पोप फ्रांसिस द्वारा सौंपे गए मिशन का हिस्सा है ताकि वे संकटग्रस्त देश के विश्वासियों को कलीसिया की निकटता प्रदान कर सकें। यह यात्रा 24 से 29 जनवरी तक होगी। इसकी घोषणा वैटिकन विभाग द्वारा जारी एक बयान में की गई है जिसमें बतलाया गया है कि पोप फ्रांसिस का इरादा है कि सीरिया की वर्तमान स्थिति में देश के कैथोलिक पूरी कलीसिया एवं विशेष रूप से रोम के धर्माध्यक्ष का स्नेह एवं समर्थन महसूस कर सकें। बयान के अनुसार कार्डिनल गुजरेत्ती के साथ विभाग के सचिव महाधर्माध्यक्ष मिशेल जलाक और कार्डिनल निजी सचिव फादर इमानुएल सबदाक भी होंगे। कार्डिनल गुजरेत्ती सीरिया के प्रेरित राजदूत कार्डिनल मारियो जिनारी धर्माध्यक्षों पुरोहितों धर्म संघी पुरुषों और महिलाओं एवं कैथोलिक लोक धर्मी से मिलकर ग्रीक मेलकाइट मेनोराइट खलदे सीरियाई आर्मेनियाई और लैटिन रीति के विश्वासों के साथ प्रार्थना करेंगे। दमिश्क और अलेपो में कार्डिनल गुजरेत्ती कैथोलिक समुदायों के धर्म गुरुओं पुरोहितों धर्म सामाजियों और लोक धर्मियों के साथ साथ स्थानीय कलीसियाओं के उदार संगठनों के साथ भी मुलाकात करेंगे। वे कार्तिक धर्माध्यक्षों की आम सभा में भी भाग लेंगे जो होम्स शहर में आयोजित की जाएगी। वक्तव्य के अनुसार कार्डिनल पोप फ्रांसिस का अभिवादन प्रांतीय धर्माध्यक्षों तक पहुंचाएंगे और इस बात पर जोर देंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में ख्रिस्ती एकता एक आवश्यक अनिवार्यता है और कार्तिक कलीसिया पूर्ण सहयोग के लिए तैयार है। 25 जनवरी को संत पॉलस के मन परिवर्तन पर्व एवं ख्रिस्ती एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह के अंतिम दिन कार्डिनल गुजरेत्ती संत पॉलस के स्मारक पर मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे। वे लातिनी कलीसिया एवं बाब तौमा में मेरोनाइट महागिरजा घर में दमिश्क के शहीदों के पौत्र अवशेषों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सीरिया की अपनी यात्रा के समापन पर कार्डिनल गुजरेत्ती लेबनान के बेरूत की यात्रा करेंगे। पोप फ्रांसिस का मानना है कि जब ख्रिस्त विश्वासी ईश्वर एवं पड़ोसी की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो वे पारस्परिक समझ में भी आगे बढ़ते हैं। संत पापा ने ये बातें ख्रिस्ती एकता सप्ताह में कही है और विश्वासों को आपस में समझदारी में बढ़ने का प्रोत्साहन दिया है। पोप फ्रांसिस ने 23 जनवरी को पोप की विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क फाउंडेशन के सदस्यों से मुलाकात करते हुए उन्हें दया के ठोस कार्यों के साथ चिंतन को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें सबसे कमजोर लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फाउंडेशन के साथ सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए पोप ने सदस्यों से कहा, आप सभी का अभिवादन करता हूं जो फाउंडेशन की गतिविधियों में स्थिरता और गति सुनिश्चित करने के लिए इसका समर्थन करते हैं। पोप की विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क के कार्य के केंद्र में विश्वपत्र दिलेक्सित नोस है, जिससे संगठन को आध्यात्मिक बल और पर्याप्त पोषण मिलता है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में फादर क्रिस्टोबल फोंस कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने इससे पहले निदेशक रहे फादर फ्रेडरिक फोरनोस को विशेष रूप से याद किया, जिनकी रचनात्मकता ने फाउंडेशन को हृदय की यात्रा पर चलने हेतु अग्रसर किया। संत पापा ने कहा, मुझे अच्छा लगता है कि आप इस आध्यात्मिकता को हृदय की यात्रा कहते हैं और मैं इस अभिव्यक्ति को दोहरे अर्थ में समझना चाहूंगा। यह यीशु की यात्रा है, उनके हृदय की यात्रा, जो शरीर धारण, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य से होकर गुजरे, और यह हमारे हृदय की भी यात्रा है, जो पाप से घायल है, जो प्रेम द्वारा खुद को जीतने और बदलने की अनुमति देता है। हृदय की इस यात्रा में हम हमेशा हमारी माता मरियम से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जो विश्वास और आशा की तीर्थ यात्रा में हमारे आगे चलती हैं, तथा हमें अपने हृदय में यीशु के शब्दों और संकेतों की रक्षा करना सिखलाती हैं। संत पापा ने फाउंडेशन के सदस्यों को बतलाया कि हृदय की यात्रा पौत्र आत्मा का कार्य है। पौत्र आत्मा के जीवित जल के बिना मसीह के साथ हृदय की कोई यात्रा नहीं होती। पोप ने विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क के कार्यों की सराहना करते हुए अपनी आशा जताई कि यह जयंती वर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, लोगों और समुदायों को इसकी भावना को जीने में मदद करेगा और एक ऐसी यात्रा के रूप में जिसमें प्रार्थना और करुणा, प्रार्थना और सबसे कमजोर लोगों के प्रति निकटता, प्रार्थना और दया के कार्य अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। अंत में पोप ने उन्हें आशीष देते हुए कहा, खुशी से आगे बढ़ें, हमेशा खुश रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। निकारागुआ के मटागाल्पा धर्म प्रांत में कलीसिया की संरचनाओं पर सरकार का एक और हमला हुआ है। 30 सेमिनरी छात्रों को हटा लिया गया है। निकारागुआ में कातिक कलीसिया को एक नया बड़ा झटका लगा है। 20 जनवरी की दोपहर को पुलिस अधिकारियों ने मध्य अमेरिकी देश के उत्तरी भाग में स्थित मटागाल्पा धर्म प्रांत में संत अलोइस गुंजागा माइनर सेमिनरी के दर्शन शास्त्र विभाग पर छापा मारा, जिसके बाद कम से कम 30 सेमिनरी छात्रों को हटा लिया गया है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं। एक हफ्ते से भी कम समय पहले राष्ट्रपति डैनियल ओर्तेगा की सरकार ने ला कर्तुजा प्रेरित केंद्र को जब्त करने का आदेश दिया था, जिसका स्वामित्व भी मटागाल्पा धर्म प्रांत के पास है। उस घटना में, जैसा कि कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बतलाया, अर्धसैनिक बलों ने छापा मारा था और आध्यात्मिक साधना में भाग लेने वाले दर्जनों श्रद्धालुओं को जबरन हटा दिया था। दाओस में आयोजित 2025 विश्व आर्थिक मंच को दिए संदेश में पोप फ्रांसिस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक एवं जिम्मेदाराना उपयोग का आह्वान किया है, जिससे सभी की भलाई के लिए मानव जाति की सहायता करनी चाहिए तथा कार्य कुशलता के लिए कभी भी मानव गरिमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने स्विट्जरलैंड के दाओस में 2025 विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष को अपने संदेश में यह याद दिलाया है कि कार्य कुशलता के लिए मानवीय गरिमा का कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। संत पापा ने कहा कि इस वर्ष के फोरम की विषय वस्तु बुद्धिमान युग के लिए सहयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विचार करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, जो न केवल सहयोग के लिए बल्कि लोगों को एक साथ लाने के लिए भी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।